की बातें आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
राम राम सा ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने घना घना राम राम सा। राम राम गौरा बहन।
राम राम भोमजी भाई। राम राम भोमजी भाई। हाँ। आज यहाँ अणु तो यार खिजड़ा हो जाने एक बात पूछ ही लू।
हाँ।
के चौपाल में आओ जब मन तो यहाँ लगे था अणु तो जी सोरो में हुए के नहीं हुए।
अरे गौरा बहन आ कोई पूछने की बात है, जी सोरो तो होना ही है। अरे पावना जिगा थे ज्ञानी किताब मिले मने।
भोमजी भाई आ बात मैं थाने मुंडे सुई सुनवाऊनी चाहती और सच्ची पूछो नहीं। हाँ। तो आ हाल थानो और मारो ही कोनी। अठे जितना भी ऊंट पालक आवे नहीं वारो और वर साथ साथ चुको पावना आवे नहीं ज्ञान देवन ने।
हाँ।
वारो भी अठे आया जी सोरो वे।
अरे बात तो है गौरा बहन। अरे अठे आया पछे कीनी ऊंट पालक ने जे गैर हाजिर देखू अठे नहीं देखू नी तो मारो तो जी आकड़ बाकड़ जी हो जाया करे। पण कई करा देखो आपारे तो ठाया बिना सरे नहीं।
सरे कोनी नी।
हाँ।
पण अमे देखो थे तो बाता करो नुवे जमाने री। पण हूं तो देखो जूने जमाने ठेर गी तो था ने एक जूने जमाने रो एडो ही दुओ सुना दो जी केर माने देखो किणी ने नी देखा नी जने जी केडो आकड़ बाकड़ हुए है।
अरे चौपाल में सगला ने डी करे आपरे दुहे दी।
देखो जूनो दुओ सुनाऊ था ने टोली सू टलता है। टोली सू टलता हिरणा मन माठा हुए वाला बिछड़ता जीणो किण विद जेठ।
वाह सागर बहन वाला बिछड़ता और जीणो किण विद जेठ। वाह पण बार तो देखो अपना वाला पावना पधारियोड़ है जिकर ज्ञान सु सिखेला ऊंट पालक जीनो और ऊंट पालन रा गुर।
पण भोमजी भाई यहाँ आडिया कहीं गालो हो किसा पावना है किसा वाला पावना है बताओ तो सही और किसी ज्ञान री बाता कराओ लो अठे।
अरे अरे ऊंटारी बाता कार्यक्रम रे चौपाल में देखो आज पावना पधारिया है प्रोफेसर ए के कटारिया। आप राजूवास में प्रभारी है अपेक्स सेंटर आ और आज आप बातचीत कराला ऊंटा माए रोग प्रकोप रे दौरान उपचार और प्रबंधन।
तो सगला पहला यहाँ स्वागत करो राम राम करला।
बिल्कुल डॉक्टर साहब आप रो चौपाल में घनो घनो स्वागत है और आपने में करा
राम राम सा।
राम राम भोम जी भाई। राम राम गबरा बहन।
डॉक्टर साहब देखो आप अठे पधारिया हो आ तो माने पक्की बात है ही के ज्ञान रो भंडार ले रहा पठे आया हो। अब भोम जी भाई और मार माथे है के कितना हवाला पा पूछ सका हाँ ऊंट पाल का सारू। तो देखो सगला पहला तो आइज बता दो के आपा बात करी ऊंटा रे माने रोग प्रकोप री तो और रोग प्रकोप हुए कही है।
गवरा बहन जैसे रोग प्रकोप हम वैज्ञानिक भाषा में तो कहते हैं आउटब्रेक, यानी कि एक स्थान पर एक समय में सामान्य से ज्यादा मृत्यु दर अगर पशुओं में हो जाती है तो इसको रोग प्रकोप कहते हैं। और रोग प्रकोप सामान्यतः संक्रामक रोगों से ही रोग प्रकोप होता है।
कि समझ में आयो गौरा बहन?
देखो भाई ज्ञानी पावना समझावे और आपने समझ में नहीं आवे आइया क्या हो सके है आपने कही है। देखो जितना भी ऊंट पालक बैठा है नी।
हाँ।
बे लटका कर रहे हैं हमारे समझ में आएगी और भरोसा कर रहा है जिको रेडियो माते सुने है नी।
हाँ।
मने भी समझ में आई हुई।
हाँ हाँ पूछू पूछू। हाँ डॉक्टर साहब पशुपालक भाई जी का ऊंट पालक बैठा है पूछना चाहे है कि रोग प्रकोप का कारण कही हुए।
भोम जी भाई और मैं सारे अपने ऊंट पालकों को पशु पालकों को बताना चाहूंगा कि रोग प्रकोप का कारण हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो यह कि जैसे पशु में सामान्य तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता में किसी कारणवश कोई कमी होती है और उस समय वातावरण में कोई संक्रमण है तो पशु रोग से प्रभावित हो जाते हैं और जितने भी पशु जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आई है वो सारे के सारे प्रभावित होकर उसको एक रोग प्रकोप का रूप दे देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में पशु प्रभावित होते हैं और मरने लगते हैं। एक तो कारण ये है और दूसरा कारण यह है कि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो सामान्य है पशु स्वस्थ है लेकिन जो संक्रमण है वो ही इतना ज्यादा प्रभावी हो गया इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि वो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी खत्म कर दे तो वो रोगग्रस्त कर सकता है पशु को। तो दो मुख्य कारण है।
तो भोमजी भाई देखो दो मोटा मोटा कारण है जिन सुखे ऊंटा ने संक्रामक रोग हो सके है। तो डॉक्टर साहब ने पूछ ला के ऊंटा रे मायने ए मुख्य संक्रामक रोग किसा किसा है जो रोग प्रकोप रूप ले सके।
गौरव बहन मुख्य संक्रामक रोग हम आज बात करेंगे को ऊंट पालकों को बताएंगे और जो मुख्य रोग इस क्षेत्र में देखे जाते हैं या जो ऊंट पालन के क्षेत्रों में देखे जाते हैं हम उन्हीं रोगों की बात करेंगे जो सामान्यतः रोग प्रकोप के रूप में प्रदर्शित होते हैं। जैसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो रोग प्रकोप का रूप लेता है रोग वो है ऊंट माथा। दूसरा रोग है निमोनिया। गलगोटू भी ऊंटों में काफी बार देखा जाता है और रोग प्रकोप के रूप में प्रकट होता है। इसके अलावा छोटे पशुओं में मुख्यतः दस्त रोग, जिसमें जीवाणु जनित ज्यादा होते हैं, वो रोग प्रकोप के रूप में हो सकते हैं। और एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें मौत तो कम होती है लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत होता है, वो होती है ब्रुसेलोसिस।
तो अब डॉक्टर साहब से पूछ ला कि बात आवे रोग प्रकोप के दौरान उपचार और प्रबंधन, तो वो डॉक्टर साहब मैं किया करा?
देखो, उपचार और प्रबंधन रोग का तभी संभव है जो सबसे पहले तो अपने रोग की पहचान करें। ऊंट पालक ऊंटों के बीच में रहता है, उसको मालूम है कि ऊंट आज मेरा ऊंट स्वस्थ नहीं है, आज उसके कोई गड़बड़ है। इसके अलावा जब वो देखता है आसपास पूरे गांव में या पूरे क्षेत्र में कि एक के बाद एक दूसरे ऊंट बीमार होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ कोई गाँव में ऊँटों को किसी रोग ने प्रभावित किया है। और जब रोग की पहचान कर लेगा कि पशु रोग ग्रस्त है, उसके बाद ही हम ये कर पाएंगे कि उसका प्रबंधन कैसे करें या उसका उपचार कैसे करें। तो रोग की पहचान सबसे पहले आवश्यक है।
तो बोम जी भाई, देखो रोग री पहचान तो अब डॉक्टर साहब अपन साथ है।
हाँ।
बताई देला, चार पांच जी को भी रोग बताया, हमारी पहचान भी पूछा ला, बचाव रहा उपाय भी पूछा ला, प्रबंधन उपचार सगली बात पूछा ला, क्योंकि आपा तो देखो चौपाल में आवा ही सारू। हाँ, तो जिको अपन मन रे मायने शंकावा नहीं, बिरा समाधान आपने पावना बता दे। पर देखो एक पखाल रे मायने समाधान उठारी बात मायने मैं भी ले रहा हूँ, पखाल भर ले रहा हूँ। देखो पावना तो ले रहा ज्ञान।
हाँ।
और मैं हमारी पखाल में ले रहा हूँ
गीतड़ला,
तो एक गीतड़लो तो पावना री मनवार सारू काट दू पखाल में।
बिल्कुल सा, आप से सुनो सा गौरा बहनी पखाल में शुमो एक फूटरो सो गीतड़लो।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन बेड़ा आप से सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटा री बाता। और आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधारे है राजू वासु प्रोफेसर ए के कटारिया, आप प्रभारी है अपेक्स सेंटर में। और आज अपन बातचीत करिया ऊंटा माय रोग प्रकोप रे दौरान उपचार और प्रबंधन।
और डॉक्टर साहब देखो गी तो पहला आप रोग बताया है कि ऊंटा रे माने संक्रामक रोग हो जाया करे जिको रोग प्रकोप रूप ले सके है। पर देखो एक एक कर आप बात करा।
हाँ। क्यों
बोमजी भाई इनसु कहिए कि ऊंट पालक ने सोरी तरीके समझ में आवेला, क्योंकि देखो पहचान भी सबरी, लक्षण अलग अलग हुए, बचाव और उपाय भी अलग अलग उतावेला, प्रबंधन उपचार सगली बात नेरी हुए हर रोग री।
हाँ।
तो एक एक कर आप डॉक्टर साहब ने पूछा कि डॉक्टर साहब जो ऊंट माता रो आप कहो कि ऊंट माता रोग हो जाए तो इरा कई लक्षण हुए जिनसु के ऊंट पालका ने ठा पड़ जाए कि ऊंट ने ऊंट माता रोग हो जाए।
देखो ऊंट पालकों को मैं सबसे पहले गबरा बहन बताना चाहूंगा कि जो माता रोग है या ऊंट माता भी जिसको कहते हैं अपने, वो एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित आजकल तो किसान और पशुपालक शायद विषाणु को नहीं जाने पर वो वायरस को जानता है, तो ये वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। और जो भी वायरस है या विषाणु है बहुत तेजी से फैलता है, एक पशु से दूसरे पशु में, एक ऊंट से दूसरे ऊंट में बहुत तेजी से फैलता है। और ये जो ऊँट माथा का रोग सामान्यतः सर्दियों के मौसम में या बदलाव के मौसम में देखा जाता है, अब इस समय ऊँट पालकों को सावचेत रहना चाहिए कि ऊँट माथा रोग पशुओं में हो सकता है।
तो ऊँट माथा रोग की पहचान किया करा कि ऊँट माथा ही रोग हो रहा है?
देखो, जो ऊँट पालक है इसको आसानी से पहचान सकते हैं, लक्षणों के आधार पर उसकी पहचान संभव है। अगर आपका ऊँट सुस्त है, चारा पानी बंद कर दिया है, उसमें तेज बुखार है, काम करने की उसकी शक्ति में कमी आ रही है, और जैसे शरीर पे दाने निकल जाते हैं, माता के दाने होते हैं, और अगर बुखार तेज है और संभावना लग रही है किसान को कि माता हो सकता है, तो उसको पशुपालक उसकी ऊँट की पूँछ उठा कर देखें, पूँछ के नीचे जो बाल रहित क्षेत्र है, जो एरिया है उसका शरीर का, उस पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। वो दाने शुरू में लाल होते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं, उसमें पानी सा भर जाता है, फिर वो पीला हो जाता है, फुंसी का रूप ले लेता है और उसके बाद फूट जाता है। और ये जो दाने होते हैं थनों पे भी हो जाते हैं, उसके नाक के आसपास हो जाते हैं, पूरे शरीर में हो जाते हैं, आंखों में भी कई बार सफेदी आ जाती है इसकी वजह से, पाँव में कई बार सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है पाँव में, और पीछे पूंछ के निचले वाले हिस्से पे, गुदा पे, योनि के बाहरी हिस्से पे ये छाले हो जाते हैं, जिसको देख के पशुपालक आराम से पहचान सकता है कि मेरा ऊँट प्रभावित हो गया है
ऊँट माता रोग से।
बिल्कुल। और इस रोग के होने के बाद ऊँट में बीमारियों से लड़ने के प्रति भी क्षमता कम हो जाती है, तो वो दूसरी बीमारी है उससे भी प्रभावित हो जाते हैं।
अब देखो, ऊँट माता रोग हो गया तो महाराज का ऊँट पालक भाई बहन उपचार कहीं करना चाहिए?
देखो, सबसे पहले ऊँट पालक ये ध्यान रखें कि जैसे ही उसको लग रहा है कि उसका पशु, उसका ऊँट ऊँट माता से प्रभावित हो गया है, तो चूंकि ये एक पशु से, प्रभावित पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैलती है, तो जो प्रभावित पशु है उसको एक जगह बाड़े में बांध ले,
ठीक है, सगला अलग ही करते हैं,
ताकि दूसरे स्वस्थ पशुओं के संपर्क में नहीं आए, और जो विषाणु है प्रभावित पशु से वो दूसरे स्वस्थ पशुओं में जाके बीमारी नहीं करे। उसका चारा अलग करना चाहिए, पानी अलग करना चाहिए, उसका घर अलग हो, और ऐसी स्थिति में सर्दी से भी बचाव करें, क्योंकि जैसे सर्दी होगी पशु पे और तनाव होगा तो पशु और ज्यादा बीमारी के लक्षण ज्यादा दिखाएगा। अच्छा, ये ऊँट माता के जो दाने हैं या फुंसियाँ हैं उसके मुंह में भी हो जाती है अंदर, तो मुंह में हो जाती है तो उसको चारे में बहुत तकलीफ होती है, तो प्रबंधन में हमें ये देखना है कि जो ऊँट माता रोग से प्रभावित है ऊँट, उसको साफ पानी दें, थोड़ा गुनगुना पानी दें सर्दी में, और चारा दें जो नरम होना चाहिए।
अच्छा,
क्योंकि जैसे तूड़ी और ये फलकटी और ये देते हैं, इसमें घाव में जाके और वो पशु को खराब करती हैं और पशु चरता नहीं है, परेशान होता है। इसके अलावा जो शरीर के बाहरी हिस्से में घाव बन गए हैं, जो मक्खियों ने कीड़े दे दिए हैं, उनकी समुचित देखभाल बहुत आवश्यक है। उसके लिए साफ सफाई करें, लाल दवा का प्रयोग करें, कुछ ऐसी मल्लम लगाएं जिससे मक्खियां नहीं बैठें, तो घाव भर जाएंगे। ये तो अपने देखो भौमजी भाई बात की प्रबंधन की, बचाव की, और इलाज की बात है कि विषाणु जनित रोगों का कोई इलाज नहीं है।
अच्छा,
विषाणुओं के खिलाफ अपने कोई दवाई उपलब्ध नहीं है जिसको यूज कर सके, हमने प्रयोग में ले सके, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, पशुपालकों को बताया कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, तो दूसरे रोगों से वो प्रभावित हो सकता है, तो ऐसी अवस्था में उसको एंटीबायोटिक पशु चिकित्सक की देखरेख में जरूर लगवाएं, कम से कम 3 दिन लगवाएं, जिससे क्या है कि दूसरे रोगों से उसका बचाव किया जा सकता।
तो अपन सावधानी रखनी है।
डॉक्टर साहब, आप एक रोग बताए निमोनिया, तो निमोनिया रा भी कोई ना कोई लक्षण होता वाला, इरो बचाव किया करा, प्रबंधन किया करा, उपचार किन बात हो सके जिनसु के निमोनिया रोग अपने उठाने हुए तो कहीं।
देखो गौरा बहन, मैं पशुपालकों को बताना चाहूंगा कि निमोनिया तो अंग्रेजी का शब्द है, और वैसे हम कहें तो फेफड़ों का संक्रमण है। जब मौसम में अचानक बदलाव आता है, सामान्य सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन पता लगता है कि रात ही रात में कोई दूसरी जगह ओले पड़ गए, बरसात हो गई, और 5-7-10 डिग्री एकदम से अचानक तापमान में कमी आ गई, उस समय ऊँट के प्रभावित होने की संभावना बहुत रहती है। मैं पशुपालकों को और विशेष तौर पर कोलायत और यहाँ हनुमानगढ़ के आसपास के पशुपालकों को बताना चाहूँगा कि अगर उनको याद हो तो इसी माह यानी कि दिसंबर में 2010 में, यानी कि आज से 5 साल पहले ये रोग आया था, और इसमें सैकड़ों ऊँटों की जान गई थी। और अगर पशुपालकों को ध्यान हो तो वो याद करें कि उनकी पहचान उस समय बहुत मुश्किल थी, लेकिन आज उन लक्षणों के आधार पर इस रोग की पहचान बहुत आसान है। इस रोग में जो प्रभावित पशु है सुस्त हो जाता है, चारा पानी बंद कर देता है, शरीर का तापमान 107 डिग्री सेल्सियस, जो काफी ऊंचा तापमान है, वो हो जाता है। पशु को चलने में तकलीफ होती है, जोड़ों में दर्द होता है उसमें, और आंखों से पानी निकलता है, नाक से पानी बहता है। शुरू में तो पानी पतला होता है, उसके बाद वो दूसरे भी संक्रमण होकर वो बाद में गाढ़ा पीला हो जाता है, और ये फेफड़ों का संक्रमण है, तो फेफड़ों की सांस लेने की जो क्षमता में कमी होती है, सांस में तकलीफ आती है इसमें। और पिछली बार हमने देखा जब ये रोग प्रकोप हुआ, ये एक जीवाणु है पास्टुरिल्ला हिमोलिटिका, उसकी वजह से हुआ था। और ये बीमारी जब हमने पता की तो ये बीमारी स्टार्ट हुई थी अफगानिस्तान से।
अच्छा।
तो अफगानिस्तान से शुरू होके पाकिस्तान होते हुए जैसलमेर के रास्ते अपने बीकानेर में हुई थी, उसके बाद पाली में भी प्रभावित हुए, सिरोही में भी, जालौर में भी ऊंट काफी मात्रा में संख्या में प्रभावित होते थे। तो उसमें हमने देखा कि जो गर्भ धारण किए हुए ऊंटनियां थी उनमें गर्भ भी गिर गए। तो ये सामान्य निमोनिया नहीं है, ये रोग प्रकोप है, बहुत खतरनाक है। अच्छा, कुछ पशुओं में छेरा भी हो सकता है, दस्त कहते हैं, और 4-5 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है इसमें। तो एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो हमने देखा है और इस एरिया में, इस क्षेत्र में हुआ भी है।
तो ये उपचार कहीं है?
देखो, जैसा मैंने बताया कि ये संक्रमण से है, हमें सबसे पहले एक ही बात ध्यान रखनी है, संक्रमण की अवस्था में जो बीमार पशु को अलग करें, उसका चारा पानी अलग करें और उसको सर्दी से बचाव करें। ये समझ सकते हैं कि ये तो बचाव के और प्रबंधन के तरीके हैं। इसका इलाज संभव है, डॉक्टर से मदद ले, डॉक्टर से बातचीत करे और इसमें एंटीबायोटिक का इलाज ले पूरा, और एंटीबायोटिक समुचित एंटीबायोटिक होना चाहिए कि वो प्रभावी हो उस बीमारी में। तो इसमें मैं एक किसान भाइयों को ये संदेश देना जरूर चाहूंगा कि जैसे ही पशु बीमार हो, उनका ऊंट बीमार हो, तो किसी के इंतजार नहीं करें, इंतजार नहीं करें, नहीं तो उसका पशु भी खराब होगा, उसका उत्पादन भी कम होगा, काम करने की क्षमता चली जाएगी,
और मौत,
मौत भी होगी, तो आर्थिक नुकसान भी है और तकलीफ भी है, पशु को भी तकलीफ है, किसान को भी। तो तुरंत वो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। और मैं यहाँ बीच में भी मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों का, आप डॉक्टर से संपर्क करें।
बोम जी भाई, देखो मोटी बात है कि डॉक्टर साहब भी भोड़ा ध्यान रखनी है ऊंट पालका ने।
हाँ।
देखो बीमारी हो भी जावे नहीं कोई कारण सु, तो देखो बचाव तो कर सके, प्रबंधन चौकी तरीके कर ले और उपचार भी है इनरो, एडी बात को नहीं। तो डॉक्टर साहब देखो अब बात करा पा गलगोटू रोग री, तो इनरा कई लक्षण होया करे है।
इसमें भी लक्षण निमोनिया जैसे ही होते हैं, गलगोटू में अचानक रोग ग्रस्त होता है, चढ़ना पीना बंद कर देता है, सुस्त हो जाता है, तेज बुखार आता है, इसमें नाकों से स्राव भी आता है। लेकिन इसमें उस निमोनिया से अलग एक बात होती है कि गले में सूजन आती है, गले पे सूजन आ गई तो गला घुटता था, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसमें जैसे गाय भैंसों में आवाज आती है, जब सांस की नली पे आपने दबाव डाल दिया तो एक घर घर की आवाज आती है, तो ऊँटों में भी ये देखा गया है, बहुत तकलीफ होती है। पेशाब भी काले रंग का आ सकता है, दस्त भी काले रंग के हो सकते हैं, और इसमें निमोनिया में तो 4-5 दिन लग सकते हैं मरने के, गलगोटू में कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है। तो ऊँट पालक ये ध्यान रखें कि अगर बहुत जल्दी जल्दी ऊँट मर रहे हैं कुछ कुछ घंटों में प्रभावित होने के बाद, तो ये HS हिमरोजिक सेप्टिसीमिया है या गलगोटू रोग है, जिससे पशुपालकों को बहुत ही ज्यादा सावचेत रहने की आवश्यकता है।
तो ये कोई उपचार?
बिल्कुल, इसका इलाज भी है, इलाज बिल्कुल 100% सही इलाज है। और लेकिन मैं बात वही करूंगा कि बीमारी पहले पकड़ में आनी चाहिए कि गलगोटू है, क्योंकि आप बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसा करते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि कोई भी एंटीबायोटिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, हर बीमारी का अलग एंटीबायोटिक है, तो रोग की पहचान आवश्यक है। अगर ये गलगोटू है उसका एंटीबायोटिक अलग है, जब तक वो एंटीबायोटिक नहीं लगेगा पशु की मौत से निजात नहीं दिला सकते, वो मरेगा ही मरेगा।
तो सही दवाई होनी जरूरी है,
बिल्कुल विशेष रूप से वही दवाई होनी चाहिए, उसके लिए पशु में लक्षणों के आधार पर तुरंत रोग की पहचान करें। और मैं भोम जी भाई आपको इसके बचाव और प्रबंधन हाँ। के बारे में बताना चाहूंगा। तो मौसम में अचानक बदलाव के समय ऊँटों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अपन ने जैसे बात की कि मौसम में अचानक बदलाव आया, एकदम से ठंड हो गई या ओले पड़ गए या बरसात हो गई, तो अचानक बदलाव के कारण ये पशु प्रभावित होते हैं। तो अगर मौसम में अचानक बदलाव आ रहा है तो ऊंट पालक ये ध्यान रखें कि भाई मेरे पशुओं को बरसात से बचाऊं, ओलों से बचाऊं, कहीं पेड़ के नीचे बांधूं, बाड़े में बांधूं, एक तो ये बचाव करें। एक क्या कि कई बार थोड़ा आदमी अपने लालची होने के कारण थोड़ा पशु के प्रति क्रूरता भी करता है, तो एक गांव से दूसरे गांव ले जाना है तो लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं एक ही दिन में, तो उससे तकलीफ होती है पशु को, तो उस अवस्था में भी बीमार होने के पूरे पूरे संभावना रहती है। तो पशुपालक उससे भी बचाएं अपने ऊंटों को। और एक बात और है कि जैसे लालच की मैं बात करूंगा कि उसको लंबे समय तक जुताई में लगाए रखते हैं ऊंट को, वो नहीं करें। बहुत माल ढुलाई के लिए अगर आपका ऊंट काम में आ रहा है तो माल ढुलाई में इतना ही उसके ऊपर भार रखें, इतना ही वजन रखें कि वो आराम से उसको ढो सके, उसको तकलीफ नहीं दें। तकलीफ के साथ साथ इस बीमारी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और इसके अलावा ऊंट को बीच बीच में समुचित आराम देते रहें, उसका चारा पानी का ध्यान रखें और गर्मी में भी ध्यान रखें कि उसकी ज्यादा भार ढोने की लालच को खत्म करना चाहिए।
बोम जी भाई, डॉक्टर साहब देखो एक एक बात केड़े ठावे तरीके अपने समझा रहा है कि ऊंट पालक ने चौकी तरीके समझ में आ जाए कि जिको भी बीमारी है लक्षण कही है उपचार किया करावे, प्रबंधन किया करे, बचाव किया करे। पर डॉक्टर साहब अब बोल रहा नहीं, एक शब्द घड़ी घड़ा बोलियो वो बोलियो लालच। तो कठे इया को नहीं कि आपा भी लालची हो गया कि यार कने जिको ज्ञान रो खजाना है जिको उंदो करावता ही रवा, यार कानी ध्यान ही नहीं देवा के थक गया वेला, याने बिसाई दिरावणी है के नहीं दिरावणी है
कि गीतड़लो सुनावणो चाहो
तो पखाल रे मानू गीतड़लो काडू, पण अबे देखो लालच को नहीं करू मारी दायरो गीत को नहीं काडू
तो
काढ़ू डॉक्टर साहब भी दायरो ए पत्तो इया लगाऊं के खाली भणाई गुणाई करे के कोई मनोरंजन गीत संगीत सुने है के नहीं सुने है के घर रे मायने यार कई योगदान है अभी तो ठा पढ़नी चीजें के खाली
परीक्षा लो कहीं डॉक्टर साहब की
परीक्षा कठे ले मैं तो विषय दे रहा मनोरंजन कराऊं के जे जूने जमाने में मैं तो जूने जमाने री बाता करया करूं के बनाई गुणाई सु पहला कोई फिल्मा और देखता वे कोई गीत संगीत सुनता वे तो वा याने जूने जमाने याद दे रहा था।
हां तो डॉक्टर साहब आप बताओ आप किसो गीतोलो सुनो चाहो मारे गौरा बेनी पखाल में।
तो मैं बोम जी भाई चाहूंगा कि नीले गगन के तले गीत हमराज फिल्म का आप मेरे लिए बजाएं।
नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
तो शाह आवार आप सुनियो डॉक्टर साहब जी पसंद रो और एक फूट रोसो गीत लो। इन बेड़ा आप से सुन दिया हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटारी बाता। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधार है राजू वासु प्रोफेसर ए के कटारिया आप प्रभारी है अपेक्स सेंटर में। और आज आप बातचीत कर रहे हैं ऊंटा माए रोग प्रकोप रे दौरान उपचार और प्रबंधन।
और डॉक्टर साहब देखो आप गीत पहला बात करी ऊंट माता रोग है निमोनिया है गलगोटू है पर आप बताए हो कि दस्त रोग भी हो जाया करे है ऊंटा ने। तो दस्त रोग लक्षण कई कई होया करे जिनसु के ऊंट पालक ने ठा पड़ जा के उनरे ऊंट ने दस्त रोग हो गया।
देखो गौरा बहन दस्त रोग की हम बात करें तो इसमें दो तरह के जो जीवाणु हैं वो मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में मैं पशु चिकित्सकों के ज्ञान के लिए भी ये बातें शामिल कर रहा हूँ ये शब्द शामिल कर रहा हूँ जिसमें एक तो जीवाणु है एस्क्रीशिया कोलाई एक दूसरा जीवाणु है साल्मोनेला। तो ये जीवाणु जनित रोग है दस्त रोग जिसमें अधिकतर छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं। इसको अगर पहचान करें तो ये है कि जैसा रोग का नाम है दस्त रोग इसमें पशु को लगातार दस्त रहते हैं दस्त में बदबू आती है ऊंट सुस्त रहता है चरना फिरना भी कम करता है शरीर में दस्त होने की वजह से लगातार पानी की कमी हो जाती है और दस्त के साथ खून भी आ सकता है और जो छोटा बच्चा है जो कमजोर और शक्तिहीन होकर मौत का शिकार हो सकता है।
उपचार
संक्रमित बच्चे को पहचानें उसको अलग करें उसका साफ सफाई का ध्यान दें चारा पानी दूषित ना हो और उसके बाद अगर किसी के लगातार पशु के या छोटे बच्चे के दस्त हैं तो पशु चिकित्सक से मिलें एंटीबायोटिक उपलब्ध हैं अपने पास और इसका इलाज संभव है। सबसे इम्पोर्टेंट बात महत्वपूर्ण बात है कि जल्दी से पशुपालक अपने बोतों में दस्त रोग की पहचान कर लें। इसमें बचाव और प्रबंधन के लिए यही है कि जैसे उसमें जैसे अगर कोई खेली से पानी पिला रहे हैं पशुओं को तो खेली की सफाई रखें। ऊंट पालकों को बताना चाहूँ अगर उन्होंने खेली बना रखी है कोई तालाब की बात अलग है अगर खेली बना रखी है घर में पानी पिलाते हैं तो पक्षियों को ना बैठने दें उसमें।
क्यों
पक्षियों को इसलिए कि पक्षी जब पानी पीता है बींट भी करता है उसमें ये जीवाणु बीटों में होते हैं, तो ये ऊँटों में जाएंगे और वो बीमारी पैदा करेंगे। और इसके अलावा जो जैसे कौवे हैं या दूसरे पक्षी, कई बार है ना हार्ड मास लाके पानी में छोड़ते हैं, उससे भी पशुओं में बीमारी होने का खतरा रहता है।
देखो कितनी छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आपने ये चीज को विशेष ध्यान रखना है। और अब डॉक्टर साहब आप बात करिए ब्रुसेलोसिस की, इस बारे में थोड़ा बहाना बताओ सर।
अगर 6 महीने या ज्यादा उम्र के गर्भ अगर गिर रहे हैं तो पशुपालक को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ब्रुसेलोसिस बीमारी हो सकती है। ये एक जीवाणु जनित बीमारी है, इसमें पहचान बहुत आवश्यक है। इसमें पशु सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि स्वस्थ है, नर पशु में तो सिर्फ ये पता लगता है कि उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है, और जो मादा पशु है उसमें गर्भपात होता है, जेर अटक जाती है, जेर नहीं गिरती है। और या इसके अलावा गर्भपात अगर नहीं हुआ, पूरे समय में बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा असामान्य होगा या अपंग होगा या कमजोर होगा। तो ये ब्रुसेलोसिस रोग की पहचान पशुपालक आराम से कर सकते हैं।
उपचार कहीं है सर?
देखो उपचार इस रोग का नहीं है, इसका जो बचाव है वो प्रबंधन महत्वपूर्ण है। तो प्रबंधन अपने कैसे करें, जैसे मान लो कि गर्भ गिर गया पशु से, तो गर्भ से चारा पानी संक्रमित ना हो, उस गिरे हुए गर्भ को दूसरे स्वस्थ पशु चाटे नहीं। एक मैं और चीज बताना चाहूंगा पशुपालकों को कि जिस तरह अपने आदमियों में होता है कि भाई डिलीवरी रूम अलग ही है, तो पशुओं में वो इस तरह की बात कोई सोचता ही नहीं है, जबकि बीमारियां लगभग एक जैसी हैं। तो पशु को ब्याने के लिए एक ऐसा अपने बाड़े में क्षेत्र कर लें, ब्याने के टाइम उसी एरिया में ले जाएं, उसी जगह पे ले जाएं, वहाँ पूरा उसको बच्चे को जन्म दिलवाएं, और जो पानी निकला है उसका या उसकी जेर निकली है अच्छी तरह समेट के दूर ले जाके गाड़ें, और वहाँ पर मिट्टी का बदलाव करते रहें, साफ मिट्टी डालते रहें, तो अगर संक्रमण गिर भी गया है तो स्वस्थ पशु उससे प्रभावित नहीं होंगे।
अब डॉक्टर साहब बताओ कि ए रोग हुए नहीं, इन सर को टीकाकरण भी है कि अर्जे है तो वक्त कराना चाहिए?
भारत वर्ष में अभी तक भी कोई ऐसा टीका नहीं है जो ऊँटों के नाम से है कि ऊँटों के लिए स्पेशल टीका है। तो किसान भाई ये ध्यान रखें बोम जी भाई कि वो बचाव है ना, उसी में अपने सफलता है, बचाव करें, और अगर रोग प्रकोप हो गया तो उसका समुचित प्रबंधन करें, तो उससे है ना काफी समस्याएं सुलझ सकती हैं।
पर डॉक्टर साहब कोई प्रचार प्रसार करिया करो या कोई ऐड़ा शिविर लगाओ हो के जटे कि मारो ऊंट पालक आ और ये जानकारियां ले सके।
देखो बिल्कुल गौरा बहन, प्रचार प्रसार का काम नियमित चल रहा है, राजू आस भी इसमें बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सबसे मोटा काम तो मेहता साहब कर रहे हैं, डॉक्टर मेहता साहब,
शरद चंद्र जी मेहता साहब
कर रहे हैं, और ऊंट संरक्षण का काम भी वो कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। और ऐसा नहीं है वो मेहता साहब बीकानेर के हैं तो बीकानेर, पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं, ऊँटों पे कैंप भी लगाते हैं, ऊँटरी बाता प्रोग्राम है, ये भी जागरूकता फैलाने का एक बहुत अच्छा साधन है। मेहता साहब मेले भी लगाते हैं, तो मेलों में भी हिस्सेदारी अपने ऊँट पालकों को रखनी चाहिए, जिससे क्योंकि मिलने से, एक दूसरे से मिलने से फायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं है, कुछ ज्ञान ही मिलता है, और ये सब लोग काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है ऊँट पालकों के लिए। पशुपालकों में मेरा नंबर आप नोट करें, 9460073909। एक बार मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ क्योंकि पढ़े लिखे भी पशुपालक हैं हमारे, 9460073909। और मैं स्वागत करूंगा किसी भी ऊंट पालक के, पशुपालक के टेलीफोन का, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं जवाब दे सकूं समय पर।
तो देखो सर नंबर नोट कर लिया नहीं तो हमें
ठिकानो बताया दो, क्योंकि कई ऐडा पशुपालक है जिसको कागज भी लिखनी चाहे।
हाँ।
क्योंकि वे कोई ऐडी समस्या है नहीं, जो कागज लिख रहा अपन ने बता दे तो वारे मुताबिक पावना बुला लिया करा जिको की हमारी समस्या रो समाधान कर दे, तो वारे सर एक ठिकानो बताया दो आप।
उंटारी बाता कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर माने आपने कागदारी अडीक रहे वैसा। तो सर देखो आज चौपाल में जानकारी देव सर पधारिया है प्रोफेसर एके कटारिया, आज डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया और माने इतनी अच्छी चोखी और ज्ञान वर्धक जानकारी दी, इन सर में आपने करा धन्यवाद और आपने में करा राम राम सा। तो सर आज ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति उंटारी बाता, संयोजक श्री श्याम पवार, प्रस्तुति श्री मिलिंद पांडे, सहभागिता थी श्रीमती प्रभा थानवी और राम सहाय हर्षरी, और अबे राम राम सा।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
ऊंटारी बातें आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।